جو بھی ہو، راجہ نے کہا مجھے وہ ہار چاہیے کیونکہ میری بیٹی کو وہ ہار بہت ادھک پریہ ہے۔ اور راجہ نے کہا کہ میں اس ویکتی کو جو یہ ہار مجھے دے گا اس کو 50,000 روپے انعام دوں گا۔ چہو اور یہ خبر پھیل گئی، سب اس ہار کو ڈھونڈنے لگے، کسی کو نہ ملا۔ اور تبھی ایک یوک اسی راج میں کسی سڑک سے جا رہا تھا اور وہاں ایک بہت ہی گندا سا تالاب تھا، اور اس نے دیکھا اس تالاب میں ایک وستو چمک رہی ہے، ہو نہ ہو اسے لگا یہی وہ ہار ہے، اور اس نے اس گندے سے تالاب میں ہاتھ ڈالا، پرنتو ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ باہر آیا، تھوڑے دیر رکا، پھر دیکھا وہ وستو اب بھی چمک رہی ہے۔ اس نے سوچا اب مجھے اس کے اندر اترنا پڑے گا، کیول ہاتھ ڈالنے سے کچھ نہ ہوگا، اور وہ اس کے اندر اترا۔ پھر سے ہاتھ پٹ کے، پرنتو ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر باہر آیا اور پھر تو پورا ہی اس تالاب میں اس نے چھلانگ لگائی، پورے وستر خراب ہو گئے، پرنتو ہاتھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا۔ پرنتو جب بھی باہر آتا تھا وہ وستو اب بھی چمک رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا وہاں سے ایک یوگی آ رہا ہے، ایک تپسوی۔ وہ تپسوی اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا، پریشان دکھ رہے ہو؟ پرنتو ایسی باتیں سادھو سنتوں کو بتائی نہیں جاتی، کیونکہ سادھوؤں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، پتا نہیں کب بدھی پلٹ جائے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ سادھو کہتا ہے مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ سنیاسی کہتا ہے مجھے بتاؤ۔ تب کہیں جا کے وہ راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے اس راج کی راج کماری کا ہار کھو گیا ہے، اور راجہ نے بہت بڑا پاریتوشک رکھا ہے، اور مجھے وہ ہار سامنے دکھائی دے رہا ہے اس پانی میں، اور میں نے بہت کوشش کی پرنتو وہ ہار میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ سادھو کہتا ہے ہار نیچے نہیں اوپر جھاڑ پہ ٹنگا ہوا ہے، جو نیچے ہے وہ کیول پرتبمب ہے۔ منوش کے اتہاس میں منوش صدیوں سے اسی ہار کی تلاش میں ہے، پرنتو وہ پرتبمب کو پکڑتا ہے، پرنتو وہ اس وستو کو پکڑتا ہے جو کہ واستوک نہیں ہے۔ اور جب سنسار کی ایسی استھتی ہو جاتی ہے اور سنسار دکھ میں ہو جاتا ہے اور سنسار میں چاروں طرف اناچار بھرشٹاچار پاپاچار ویاپت ہو جاتا ہے اور منشیہ دکھی ہو جاتا ہے، اور اتنا دکھی ہوتا ہے کیونکہ دشا اس کی غلط تھی، جو ہار اوپر لٹکا ہوا ہے، جو سکھ اوپر ہے وہ نیچے ڈھونڈ رہا ہے، جو سکھ آتما میں ہے وہ دیہ میں ڈھونڈ رہا ہے، جو پرماتما اوپر ہے اس کو وہ کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے، اور یہی اس کی غلطی ہے۔ اور جب ایسی غلطی میں منشیہ رہتا ہے اور جب سنسار کا ایسا پتن ہو جاتا ہے، پریتراناام سادھونات وناشائے چتشکرتام، تب تب بھگوان اس سنسار میں آتے ہیں، اور وہ سمے اب چل رہا ہے جبکہ بھگوان سوئم اس دھرتی پر آ چکا ہے۔ اور جب وہ دھرتی پر آیا تب اس نے منشیہ کو بتایا تم جسے ستیہ کہہ رہے ہو وہ ستیہ نہیں، اور جب وہ سنسار میں آتا ہے، وہ پرمپتا اس دھرا پر آتا ہے، تو ایک ایسے یگیہ کی استھاپنا کرتا ہے جس یگیہ سے ستیہ گیان نکلتا ہے، جس یگیہ سے یگیہ وست وتس نکلتے ہیں، جو کہ اس کو اس کے کاریہ میں مدد کرے۔ تو ورتمان سمے وہ سمے چل رہا ہے جبکہ بھگوان دھرتی پر آ چکا ہے، اور اس نے جو یگیہ رچا، اس نے جو مہان یگیہ رچا، اسی کا نام ہے پرجاپتا برہما کماری ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मंच पे विराजमान सभी माननीय गण, प्रतिष्ठित अतिथि इस ईश्वरीय सभा में आप सबका उस परमात्मा की तरफ से, उस यज्ञ की तरफ से और इस भगवान की छोटी सी फुलवाड़ी की तरफ से और माउंट आबू मधुबन की तरफ से आप सबका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आप सब यहाँ आए, क्योंकि ये सभा साधारण सभा नहीं है। जिन बहनों को आप यहाँ देख रहे हैं ये साधारण बहनें नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कभी अमेरिका के एक स्पीच में कहा था, एक समय आएगा, उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर का त्याग किया 1902 में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई 1936-27 में। एक भविष्यवाणी, एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्म पैगाम फैलाएगी। अ डे शैल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। और वो जो नारिया है वो यही ब्रह्मा कुमारी बहने हैं। जिस नारी को संसार ने द्वारम किमकम नरकस्य नारी कहा, वो नरक का द्वार है। ऐसी बहनों को भगवान जब धरा पर आए तो सारा ज्ञान का कलश उनके सिर पर रख दिया। ये संसार की एकमात्र संस्था है। अब तक द्वापर युग से जो शास्त्र लिखे गए पुरुषों ने लिखे गए, पुरुषों ने लिखे, अब तक जो कुछ धर्म स्थापक हुए वो सभी पुरुष हुए। ये एकमात्र संस्था है जहां पर जब भगवान धरा पर आता है तो वो उन बहनों को, उन नारियों को जिन्होंने अब तक केवल ठोकर खाई, उन्हें आकर वो ठाकुर बना देता है। तो जिस मंच पर आप सभी माननीय अतिथि आ जाए, ये मंच ईश्वरीय मंच है, परमात्मा मंच है। असंख्य धर्म इस संसार में है। According to one estimate, there are 4,300 religions in the world. 4,300 धर्म इस धरती पर है। परंतु रक्तपात जो हुआ है वो नास्तिकों ने कम किया है, आस्तिकों ने ज्यादा किया है। कहा जाता है पिछले 2,500 साल में विश्व भर में लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं रिकॉर्डेड, उससे तो कई अधिक हो गए। अर्थात कुछ ही समय है कि जब युद्ध नहीं हुआ इस धरती पर, और वो जो कुछ समय था वो युद्ध की तैयारी का समय था। चाहो युद्ध इस भारत भूमि को न मालूम कितने आक्रांताओं ने पदाक्रांत किया। 1300 वर्ष ये भारत भूमि गुलाम रही। जो जो आया उसने इस भारत को गुलाम बना दिया। परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक उसने किसी को गुलाम नहीं बनाया। और ऐसी भारत की हम संतान है, ऐसी भारत, वो भारत माता हमारी माँ है। एक चाणक्य का वाक्य याद आता है, किसी समय जब नंद की सत्ता थी और वो क्रूर और अत्याचारी धननंद की सत्ता थी मगध में, तब चाणक्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ कर फेंक दिया था। वो चाणक्य एक बहुत सुंदर वाक्य उसने कहा है कभी, उनका कहना था एक संवाद में केवल मगध मेरी मातृभूमि नहीं, केवल तक्षशिला मेरी मातृभूमि नहीं, केवल पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि नहीं, समुद्र से हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत का कण कण मेरा है। ऐसा देश प्रेम, ऐसा मातृत्व प्रेम, उसी धरा पर जब भगवान आते हैं तब एक यज्ञ की स्थापना होती है। और वो यज्ञ सर्वत्र भिन्न है। अब तक धर्म स्थापक आते गए, इब्राहिम आया, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, शंकराचार्य आए, मोहम्मद पैगंबर आए, सभी ने धर्मों की स्थापना की, परंतु संसार की हालत फिर भी बिगड़ती ही गई, बिगड़ती ही गई, बिगड़ती ही गई। अंततः भगवान स्वयं धरती पर आते हैं और फिर एक संस्था की, इसे संस्था कम, हम इसे यज्ञ अधिक कहते हैं। तो ये बात है 1936-37 की। एक साधारण सा व्यक्ति था जिसका नाम था दादा लेखराज। हीरो का व्यापारी था, बड़ा परिवार था और बहुत बड़ा भक्त था। एक नहीं 12 गुरु किए थे, सत्संग करते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। राजा महाराजा उनको अपने पास बुलाते थे, प्रामाणिक थे। लोग कहते थे, राजा महाराजा कहते थे, हमको भगवान ने राजा गलती से बना दिया, राजा बनने के योग्य तो आप है। ऐसा एक सम्माननीय व्यक्तित्व था जो अति भक्ति पूर्ण था, घर का वायुमंडल भक्तिमय था, गीता पाठी था, सत्संग करते थे रोज। ऐसा ये व्यक्ति जब एक बार सत्संग चालू था तो अचानक कुछ हो गया और उस कमरे से निकल गए और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। उनकी जो बहू थी उसको आश्चर्य लगा, दादा ने आज तक ऐसा कभी किया नहीं, आज क्यों ऐसा कर दिया। वो पीछे पीछे गई और उस कमरे में गई और वहां पर कमरे में लाल प्रकाश हो गया और उस व्यक्ति दादा की आंखें लाल हो गई और एक आवाज आ रही है, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानत स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और थोड़ी देर के बाद वो फिर नॉर्मल हो गए। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दादा को लगा कि मुझे मेरे गुरु ने साक्षात्कार कराया, उनको चतुर्भुज विष्णु दिखे। वो अपने गुरु के पास भागते हुए गए और गुरु को कहने लगे, आपकी वजह से मुझे साक्षात्कार हुआ। पर गुरु ने कहा, मुझे तो खुद ही नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं तुमको क्या हुआ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तब तो संशय और बढ़ गया, ये हो क्या रहा है। मुंबई गए, बनारस गए, सिंध हैदराबाद में थे जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां ये सब हुआ, मुंबई में हुआ। उनको एकांत चाहिए था, बनारस गए। कलकत्ता में भी बिजनेस था, लखी बाबू नाम से उनकी दुकान थी और हीरो का बहुत, जैसे ये व्यक्ति प्रसिद्ध व्यापारी था। पर एक के बाद एक नए नए दृश्य दिखने लगे। कभी देखा विनाश हो रहा है, ये दृश्य तब दिखे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी हुआ ही नहीं था, तब संपूर्ण विनाश का साक्षात्कार हुआ। और थोड़ी देर के बाद वो इतने दुखी हो गए और फिर एक दूसरा साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योतिर्बिंदु धरती पर आ रहे हैं और देवता रूप धारण कर रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या है। और तब धीरे धीरे कुछ और चीजें होने लगी, एक सत्संग बना, जैसे उनके शरीर में एक शक्ति आने लगी और वो बोलती थी और वो जो बातें बोलती थी वो शक्ति वो इस व्यक्ति के ज्ञान से बाहर की थी। और एक छोटी सी सत्संग की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया ओम मंडली, क्योंकि वहां पर सिंध में वो लोग ओम की ध्वनि करते थे और एक स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। परंतु कुछ ही समय के बाद जबरदस्त विरोध होने लगा, क्योंकि इस संस्था में छोटी छोटी कन्याएं माताएं जुड़ गई और कुछ ऐसी धारणाएं थी कि उसके वजह से समाज में विरोध होने लगा। और आप सब जानते हैं, जब भी कोई नई संस्था चालू होगी, जब भी कोई नया कार्य होगा, उसको तीन बातों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले परिहास, रेडिक्यूल, दूसरा विरोध, अपोजिशन, और तीसरा एक्सेप्टेंस। उसी तरह इस संस्था को भी तीन बातों से गुजरना पड़ा। लोगों ने हंसी उड़ाई, बाद में बहुत विरोध किया, एक बाकायदा कमिटी बनी, एंटी ओम कमिटी, ओम मंडली कमिटी, पिकेटिंग की, बहुत कुछ किया, दादा लेखराज को मारने की कोशिश की, कोर्ट केसेस हुई, बहुत कुछ हुआ, हंगामा हो गया। ऐसा हंगामा जो सिंध में कभी नहीं हुआ था। और सिंध कम्युनिटी, वो कमिटी, भाई बुंद कम्युनिटी, वो थी कि जो विलासी थी, वो जो माताओं के पति बाहर गए थे बिजनेस के लिए, वापस आए तो झगड़े होने लगे। फिर वहां से शिफ्ट हुआ कराची, और कराची में 14 साल रहे 1950 तक। यहां पर तपस्या का पीरियड था। धीरे धीरे वो सारा हंगामा शांत हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया, अरेस्ट हुई, कोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु दादा लेखराज, जो ब्रह्मा बाबा जिनको हम कहते हैं, निश्चिंत थे, क्योंकि उनको पता था ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी सत्संग में आता था उनको देखता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। जो भी सत्संग में बैठता था ढोलने लगता था, किसी को स्वर्ग दिखने लगता था, कोई अशरीरी बन जाता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसी धुन फैल गई कि ये कौन सी संस्था है, ये क्या है, यहां पर ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो विरोध था और दूसरी तरफ साक्षात्कार था, दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। एक न्यूज़पेपर है द सिंध ऑब्जर्वर, उसमें लिखा था ये जो दादा लेखराज है, ही इज प्रैक्टिसिंग लेचरी एंड सॉर्सरी, जादू टोना करता है, बंगाल से जादू टोना सीख कर आया है, और ये कामुक व्यक्ति है, कन्याओं को इसने जमा किया है। ऐसी ऐसी ग्लानी की बातें, ऐसी ऐसी विरोध की बातें, हर दिन अखबार में कुछ ना कुछ, हर दिन विरोध। ये सारा विरोध का सामना करते हुए संस्था कराची आई, और दादा ने इतना बड़ा जो डायमंड का बिजनेस था, अपने सब कुछ अपने पार्टनर को दे दिया, और उनको लगा आई हैव रिसीव द डिवाइन कॉल, अब मैं नहीं रुक सकता। क्योंकि वो जो शक्ति उनमें आई, उस शक्ति ने कहा कि मैं सभी आत्माओं का पिता हूं, मैं परमात्मा हूं। अब तक जो धर्म स्थापक आए वो सभी ईश्वर पैगंबर थे, पयंबर थे, तीर्थंकर थे, बुद्ध थे, अवतार जो भी उनको कहो। उस आवाज ने कहा कि मैं अब तुम्हें सत्य ज्ञान दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया, एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, जिसका गायन है वो अब मैं बताऊंगा तुमको क्या है। संस्कार भारत में षडशास्त्र है, द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, द्वैता द्वैत वेदांत, इतनी फिलॉसफीज, इतने शास्त्र, अटर कंफ्यूजन। लास्ट में उनके मुख से जो वाक्य निकले वो भगवान के वाक्य थे, और एक ज्ञान की धारा बहने लगी, उस धारा को कहा गया मुरली। और 1955 में 5/5/50 संस्था शिफ्ट हुई माउंट अबू, जो कि वर्तमान समय संस्था का मुख्यालय है, वहां पर पांडव भवन है, वहां पर एक नई लहर फैली। और जो कन्याएं थी लगभग 300, जो कि अब हमारी सारी दादियां हैं, उनमें से अब कुछ रह गई है, कईयों ने शरीर छोड़ दिया, वो छोटी छोटी कन्याएं, वो छोटे छोटे भाई माउंट आबू आए। और 1950 से लेकर आज तक वहां पर भी 2-3 स्थान बदले, और धीरे धीरे सेवाओं का पाठ चालू हुआ। अब तक बैठकर उन्होंने तपस्या की, क्योंकि दादा बहुत अमीर थे, 14 साल तक सभी 300 बच्चों की पालना की, कोई कमाने वाला नहीं था, इतना पैसा था। पर धीरे धीरे माउंट आबू जब पहुंचे, पैसा खत्म हो गया, बेगरी पार्ट जिसको हम कहते हैं वो आया, और उस बेगरी पार्ट में भी बहुत सारे बच्चे तो थे वो छोड़कर चले गए, और जो निश्चय बुद्धि थे कि हाँ यही भगवान है और इनके तन में ही भगवान आता है, यही वो माध्यम है, यही वो ब्रह्मा है, वो रुक गए। और धीरे धीरे संस्था का सेवा का पाठ चालू हुआ, सेवा केंद्र खुलते गए यहां वहां, बहुत कम सेवा केंद्र थे तब, गिने चुने। और धीरे 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 सबसे पहली प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती, और 1969 तक 93 एज में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। उस 90 उम्र में भी वो व्यक्ति दिन रात सेवा करते वाला था, और उसके बाद भी 1969 के बाद भी भगवान का वो पाठ चालू रहा दादी गुलजार के द्वारा। तो इस संस्था की ये एक छोटी सी कहानी है, शुरुआत सिंध हैदराबाद में, फिर कराची, फिर माउंट आबू, 69 में दादा का देहावसन, और उसके बाद में दादी प्रकाशमणि मनमोहिनी दीदी, और वर्तमान समय दादी जानकी इस संस्था की हेड है, जिनकी उम्र 103 वर्ष है, और वो इतनी एक्टिव है, उनको सब याद है। 30 साल पहले इस यज्ञ में 5 किलो चावल किसने दिए वो भी याद है, ऐसी उसकी मेमोरी है। और हमको ये सौभाग्य है कि हम उनके डॉक्टर हैं, और कई बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो हम उनके साथ थे, और हमने देखा कैसे कई बार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। उन सब परिस्थितियों में से भी शी इज अ स्टैंडिंग चैलेंज टू द मेडिकल फील्ड, कि उनकी जो बीमारियां हैं शरीर के हिसाब किताब, परंतु फिर भी उनके मन पर उसका कोई असर नहीं है, ऐसी वो प्रशासिका है। तो वर्तमान समय माउंट आबू मुख्यालय है, और विश्व भर में 130 देशों से भी अधिक देशों में 8,500 से भी ज्यादा सेंटर्स है, और सारे विश्व भर में 15 लाख से भी अधिक लोग होंगे जो यहां पर नियमित आते हैं, और कई सारे लोगों का अनुभव है कैसे जीवन परिवर्तन हो गया। माउंट आबू में ही हम देखते कितने लोग आए, व्यसनी आए, दारू पीने वाले आए, और वहां आते ही पता नहीं उनको क्या हो गया, जैसे कोई ओशन ऑफ प्यूरिटी में आ गए। एक कमिश्नर साहब थे, आए थे, बहन जी उनको लेके आई ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने कहा मैं एक शर्त पर आऊंगा, मुझे सिगरेट चाहिए, अगर आप परमिशन देंगे तो ही मैं आऊंगा। तो बहन जी ने कहा वहां अंदर कैंपस में तो नहीं, परंतु आप कैंपस के बाहर जाकर पी सकते बीच बीच में, और कैसे भी करके उनको कोई विंग के प्रोग्राम में लेके आई। तो वो जो कमिश्नर साहब थे बीच बीच में जाते थे, आते थे, जाते थे और आते थे, और धीरे धीरे उनको इतनी आत्मग्लानी हो गई वहां के पवित्र वायुमंडल में, पवित्र वातावरण में, कि उन्होंने वहीं पर संकल्प कर लिया कि आज से ये बंद, और वो हमेशा के लिए बंद हो गई, निर्व्यसन। ऐसे एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण है, लाखों। यहां इस संस्था में ऐसा कोई नहीं जो किसी भी व्यसन को का प्रयोग करता है। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि मुझे केवल 100 ऐसे लोग चाहिए, 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड, जो सिंसियर टू द कोर, जो ये कहे कि हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं है, जो ब्रह्मचारी होंगे। और इस संस्था में कोई एक नहीं, 100 नहीं, हजारों ब्रह्मचारी है। तो विश्व का परिवर्तन इसी शक्ति से होगा, पवित्रता की शक्ति से। और आज हमें बहुत हर्ष है कि आप सब लोग यहाँ आए, जो मंच पर विराजमान है, और आज तक आपने जो कुछ इस सहयोग दिया इस कार्य में, ये सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान के ही महावाक्य है, परमात्म तालाब एक एक बूंद बूंद से भरेगा, एक एक आत्मा के दिए हुए एक एक सहयोग की बूंद से भरेगा, और आप सब ने सहयोग दिया अब तक इस परमात्म तालाब को भरने के लिए, और आशा है कि भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे। तो संस्था की तरफ से, यज्ञ की तरफ से, यह संस्था एक यूनिवर्सिटी भी है, एक पाठशाला भी है, जहां पर हम सब विद्यार्थी है। इस पाठशाला में ऐसी अद्भुत यह पाठशाला है, कोई 5 साल का है, कोई 1 दिन का है, कोई 50 साल का है, और सबको एक ही पढ़ाई है, अद्भुत सी पाठशाला है। यहां पर हमको याद है एक माता फ्लाइट से उतर रही थी, उसको किसी ने पूछा वो माउंट आबू आने के लिए, व्हाट डू यू डू, विदेश की माता थी, उसने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, उसने कहा वी हेल्प गॉड। दुनिया में लोग भगवान से मदद मांगते हैं, उसने कहा हम भगवान को मदद कर रहे हैं। कैसा अद्भुत उत्तर है, किस लिए मदद कर रहे हैं? पवित्रता के लिए मदद कर रहे हैं। उसे और कोई मदद नहीं चाहिए, उसे श्रेष्ठ जीवन चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसे छल कपट और छिद्र छिद्रान्वेषण पसंद नहीं, तो ऐसा निश्चल पवित्र प्योर जीवन एक का नहीं, दो का नहीं, हजारों आत्माओं का है। और ये वंडर है, आप अगर माउंट अबू आएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, इतना बड़ा कार्य कैसे चल रहा है, 20-20, 30-30 हजार लोग एक साथ, और कैसे भोजन बन रहा है पता नहीं चल रहा है, आवाज नहीं, अपने आप सब हो रहा है। और ये देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है ये कार्य कर सकने की, केवल और केवल परमात्मा ही ये कार्य कर सकता है। तो अभी हम सभी अलर्ट होके बैठेंगे और कुछ समय के लिए भगवान ने जो राजयोग सिखाया है उसका अभ्यास करेंगे। तो सभी सभा में भी जो बैठे हैं सभी स्थिर होके बैठ जाएंगे, अलर्ट। ओम शांति। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ एकदम शिथिल, मन शांत, संसार का सारा चिंतन, सारी बातें एक तरफ, आज मुझे ये खोजना है कि मैं कौन हूं, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, मन एकाग्र संपूर्ण मौन, मैं कौन हूं, क्या यह शरीर मैं हूं, क्या मेरा अस्तित्व केवल शरीर तक ही है या मैं कुछ और हूं, पार्थिव देह में विराजमान चैतन्य की वो तरंग मैं हूं। वातावरण में संपूर्ण अव्यक्त प्रवाह, गहन एकांत, मैं देह नहीं, न च भाति भूत संघम, मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, ज्योति का कण, मैं दिव्य आत्मा हूं। शरीर केवल एक माध्यम है, मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूं, कानों में जो संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है वो मैं आत्मा सुन रही हूं। जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो आवाज आ रही है वो आवाज आवाज से परे ले जाने वाली है। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में चैतन्य तरंगे फैल रही है। मैं शांत हूं, संपूर्ण शांत। शांति की मेरी खोज समाप्त हुई, जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो मेरा ही स्वरूप है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेममयी आत्मा हूं, प्रेम का सागर परमात्मा, उसकी मैं संतान हूं। मेरा मन अब संपूर्ण पॉजिटिविटी से भर गया है। मैं सुख स्वरूप हूं, सच्चित आनंदमयी हूं। अब मुझे पता चला वह भगवान भी मेरी ही तरह ज्योतिर्मयी है, और वो धरा पर आ चुका है, और वो मेरा पिता है, और सर्व संबंध में मुझ आत्मा के उसके साथ है। न मालूम मैं कहां भटक गया था संसार में, अब वो मिल चुका है। अब ये जीवन दिव्यता को प्राप्त हुआ है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और जिस शांति का अनुभव मुझे आज हो रहा है, अब उसी शांति को मुझे अपने घर में फैलानी है, अपने ऑफिस में फैलानी है, जिन लोगों के संपर्क में मैं आता हूं उनको देनी है, इस राष्ट्र के हित में ये शांति लगानी है, विश्व कल्याण की ये भावना। हे विश्व ची माजे घरा, फिर से हृदय में जाग रही है। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का भाव। मैं शांत स्वरूप हूं, और इसी शांति का अनुभव मुझे बार बार करना है। और शांति का जो स्रोत है परमात्मा, उसको जानना है, उससे अपना संबंध फिर स्थापित करना है। इसी भावना के साथ आज से मैं अपने अलौकिक जीवन की यात्रा शुरू करता हूं। यात्स देही यात्स जन्मी, उस परमात्मा से मिलन हो जाए। मौन ओम शांति।